द्विवेदी युगीन हिंदी कविता। द्विवेदी युग का नामकरण नवजागरण के अग्रदूत समालोचक और प्रसिद्ध पत्रिका सरस्वती के संपादक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर किया गया है। अपनी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में यह काल अत्यंत उथल पुथल भरा रहा है। एक ओर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम अंग्रेजों के सम्मुख विनम्र बने रहने की नीति को त्याग रहा था, वहीं बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल जैसे नेता स्वतंत्रता आंदोलन को शहरी निम्न मध्य वर्ग और यहाँ तक के ग्रामीण जनों तक ले जाने की कोशिश कर रहे थे। स्वतंत्रता आंदोलन इसी कालखंड में जन आंदोलन का रूप धारण कर रहा था। यह महत्वपूर्ण है कि इसी कालखंड में महात्मा गांधी स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी भूमिका निभाने के लिए प्रवेश कर रहे थे। बदली हुई परिस्थितियों में स्वतंत्रता आंदोलन जमीनी स्तर पर बढ़ रहा था, राष्ट्रीयता का भी विकास हो रहा था। इन परिस्थितियों का अपने समय की साहित्यिक सांस्कृतिक चेतना और कविता पर गहरा असर पड़ा। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 ईस्वी में हिंदी को केंद्रीय पत्रिका सरस्वती के संपादक होकर आए। उन्होंने अपनी प्रखर चेतना, ज्ञान एवं संपादकीय कौशल से तत्कालीन साहित्यिक समाज को दिशा देने का कार्य किया। रीतिकालीन मानसिकता के विरोध की भारतेंदु युग में प्रारंभ हुई प्रवृत्ति को द्विवेदी जी ने बेहद प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाया। विशेष रूप से कविता में रीतिकालीन रूढ़ियों का विरोध करने में उनकी भूमिका ऐतिहासिक है। उन्होंने श्रृंगार और भक्ति जैसे विषयों को छोड़कर राष्ट्रीय चेतना एवं समाज सुधार के विषयों पर लिखने तथा ब्रज के स्थान पर खड़ी बोली हिंदी में कविता लिखने पर बल दिया। यह आकारण नहीं है कि इस युग के कवियों ने ब्रज की कथित सरस काव्यात्मकता का मोह छोड़कर नवीन चेतना के सहज साधारण भाषा खड़ी बोली में कविता लिखना स्वीकार किया। उन्होंने काव्य विषय के रूढ़ घेरों को तोड़कर नए नए विषयों जैसे कलयुगी साधु, कविता, पुस्तक प्रेम, मेहंदी, नेकटाई, पौरुष, ग्राम गौरव, दरिद्र विद्यार्थी, कृषक पर कविताएं लिखी। द्विवेदी जी के प्रभाव से कवियों ने हिंदी के मानकीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। गद्य पद दोनों में एक ही रचना भाषा खड़ी बोली का प्रयोग होने लगा। दोनों में ही रचनाओं ने हिंदी के मानक रूप का व्यवहार करना प्रारंभ कर दिया। इस युग के कवि राष्ट्रीयता, राष्ट्रीय जागरण, स्वतंत्र भावना, समाज सुधार, मानवतावाद के बृहत्तर परिप्रेक्ष्य में विषयों का चुनाव कर रहे थे और इस तरह कविता की दुनिया में नई खिड़कियां, नए दरवाजे खुल रहे थे। इस युग के प्रमुख कवि हैं श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी, माखनलाल चतुर्वेदी, गया प्रसाद सुख स्नेही, गोविंद सिंह नेपाली, ठाकुर गोपाल शरण सिंह, नाथुराम शंकर शर्मा, सिया राम शरण गुप्त, श्याम नारायण पांडे, मुकुटधर पांडे, अच्युतानंद और वियोगी हरि। द्विवेदी युग की काव्य धारा का प्रमुख स्वर राष्ट्रीयता और राष्ट्रीय जागरण का था। श्रीधर पाठक की भारतश्री, भारत प्रशंसा, हिंद वंदना, भारत थान, भारत सुत, भारत गगन आदि कविताओं में राष्ट्रीय विचारधारा मुखर है। श्रीधर पाठक भारतेंदु युग और द्विवेदी युग की राष्ट्रीय भावनाओं को जोड़ने वाली एक कड़ी के रूप में दिखाई देते हैं, इसलिए उनकी भारत गीत रचना में देशभक्ति की भावनाओं को निजी अस्मिता से जोड़ा गया है। वंदनीय वह देश जहाँ की देशी निज अभिमानी हो, बाधवता में बंधे परस्पर वर्त, परता के अज्ञानी हो। निंदनीय वह देश जहाँ की देशी निज अज्ञानी हो, सब प्रकार परतंत्र पराई प्रभुता के अभिमानी हो। स्वाधीनता प्राप्ति के लिए उन्होंने त्याग की भावना पर जोर दिया। पैदा कर देश जाति ने तुमको पाला पोसा किए हुए हैं, वनिज हित का तुमसे बड़ा भरोसा, उससे होना उऋण प्रथम है, सत्य कर्तव्य तुम्हारा, फिर दे सकते हो वसुधा को शेष स्वजीवन सारा। द्विवेदी युग में स्वराज की परिकल्पना स्पष्ट आकार लेती है। राष्ट्रीय राजनीति भले ही अभी स्वायत्त शासी राजादी पर विचार कर रही थी, परंतु द्विवेदी युगीन कवि दुखदायी शासन को हटाने और अपना राज्य स्थापित करने अर्थात स्वराज प्राप्त करने को एक स्पष्ट लक्ष्य मान रहे थे। दुखदायी शासन से अपनी सारी शक्ति हटा लो, निःसुख दुख का अपने ऊपर सारा भार संभालो, अपना शासन आप करो, तुम यही शांति है, सुख है, पराधीनता से बढ़ जग में नहीं दूसरा दुख है। देशवासियों में व्याप्त पराजय बोध को दूर करने के लिए कवियों ने सुखमय, संपन्न और आत्माभिमानी विश्वगुरु, शांति पूजक, युद्ध विरोधी, समृद्ध कला, ज्ञान और विज्ञान वाले कल्पित भारतीय अतीत का गौरवगान किया। मैथिली शरण गुप्त भारत भारती में लिखते हैं, यह पूर्ण भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य हैं, विद्या कला कौशल सबके जो प्रथम आचार्य हैं, संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े हैं, पर चिन्ह उन उच्चता के आज भी कुछ खड़े हैं। ऊपरी तौर पर अतीत का यह गरिमागान आत्मग्धता लिए हुए दिखाई देता है। यह भी स्पष्ट है कि इसमें पुनरुत्थान भावना घुली मिली है। आर्यवाद की विचारधारा 18वीं और 19वीं सदी के औपनिवेशिक इतिहासकारों के इतिहास दृष्टि का परिणाम थी, जिसने राष्ट्रवादी आंदोलन में पुनरुत्थान भावना को बढ़ावा दिया। आर्यश्रेष्ठता के इस भाव ने आर्य और नार्य के बीच की खाई को बढ़ाया। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच विभाजन रेखा को गहरा करने में भी इसकी भूमिका प्रभावशाली रही है। परंतु यह भी स्पष्ट है कि मैथिली शरण गुप्त ने जब अतीत के आर्यों को महानता का वर्णन किया तो उसमें अतीत गौरव के साथ वर्तमान की अर्थात आकांक्षा का भी भाव मिला हुआ है। आशय यह है कि अपने तत्कालीन समाज में वे जो गुण और चारित्रिक विशेषताएं चाहते थे उसका आरोप उन्होंने अतीत के आर्यों पर किया। वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे। वे स्वार्थ रथ को हो मोह की मदिरा कभी पीते न थे। वे मंदिनी तल में सुकृति के बीच बोते थे सदा, पर दुख देख दयालुता से द्रवित होते थे सदा। संसार के उपकार के हित सब जन लेते थे सभी, निश्चेष्ट होकर किस तरह से बैठ सकते थे कभी। फैला यही से ज्ञान का आलोक सब संसार में, जागी यही थी जग रही जो ज्योति अब संसार में। वे मोह बंधन मुक्त थे, स्वच्छंद थे, स्वाधीन थे, संपूर्ण सुख संयुक्त थे, वे शांति शिखराशीन थे। गौर कीजिए, गुप्त जी ने आर्यों में निम्न विशेषताएं अंकित की: परोपकार, सक्रियता, ज्ञानवान, मोहबंधन मुक्त, दयालुता, पर दुख कातरता। ये सभी विशेषताएं वे 20वीं सदी के प्रारंभ दशकों के गुलाम भारत के नागरिकों में चाहते थे। खासतौर पर स्वच्छंद और स्वाधीन नागरिकों की कल्पना तत्कालीन गुलामी से सीधे संबद्ध है। कवियों ने गौरवशाली अतीत में पुरखों के त्याग, शौर्य, पराक्रम तथा बलिदान की गाथाएं गाई। इस तरह वर्तमान की दुर्दशा से बाहर जाने के लिए नवयुवकों को त्याग और बलिदान के लिए प्रेरित किया गया। प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। मैथिली शरण गुप्त ने स्वदेश संगीत और भारत भारती में ठाकुर गोपाल शरण सिंह, राम नरेश त्रिपाठी आदि कवियों ने अपने गीतों और खंड काव्यों के माध्यम से परतंत्रता के खिलाफ संघर्ष का बिगुल बजाने का आह्वान किया। इस युग के कवि वैश्विक परिदृश्य में उभर रही मानवतावादी चेतना से प्रभावित थे। उन्होंने अपने काव्य में पीड़ितों, शोषितों, दलितों, दुर्बलों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करते हुए मानव प्रेम का स्वर उच्चरित किया। विश्व प्रेम के बंधन ही में मुझको मिला मुक्ति का द्वार। कवियों ने मानवता का संदेश प्रसारित करते हुए शोषण और अन्याय के शिकार किसान, मजदूर, अछूत, विधवा आदि जनों की दयनीय दशा का कारुणिक चित्र खींचकर पाठकों के मन में उनके प्रति सहानुभूति उत्पन्न करने का प्रयास किया। मैथिली शरण गुप्त ने सनई ने कृषक क्रंदन, नाथुराम शर्मा ने गर्वदार हास्य लिखकर, श्रीधर पाठक ने विधवाओं की दीन दशा चित्रित करके तथा हरियोद ने छूतों पर कविताएं लिखकर अपनी सहानुभूति प्रकट की। इस युग में सरस्वती में भोजपुरी बोली में पहली बार हीरा डोम नामक अल्पज्ञात कवि की अछूत की शिकायत कविता छपी। यह कविता छूतों की भावनाओं को एक बड़े सवालिया निशान के साथ सामने रखती है। भक्ति आंदोलन के कबीर, रविदास, दादू जैसे कवियों ने वर्ण व्यवस्था और जाति प्रथा के अमानवीय रूप पर जो सवाल खड़े किए थे, हीराडोम उन्हें पुनः नए सिरे से पूछ रहे थे। हमनी के इनरा के नगीचे न जाए ले जा, पाके में से भरी भरी पियतानी पानी, पनही से पीटी पीटी हाथ गोड़ तुरी देले, हमनी के तनी काहे के हलकानी। प्रेमचंद की कहानी ठाकुर का कुआं में यह सवाल पुनः उभरा। सवालों की इस कड़ी में कुछ सवाल ऐसे थे जो इस तरह की भक्ति काव्य में पूछे न गए थे। ये सवाल सीधे ईश्वर से जुड़े हुए थे। खंभवा के फारी प्रहलाद के बचेवले जा, ग्राम के मुहे से गजराज के बचेवले, धोती जुर्बोधना के भैया छोरत रहे, प्रगट होके तहा कपड़ा लड़वैले, मरले रवनवा के पलले मिरवना के, कानी अंगूरी पे धे के पथरा उठवले, कहवा सुतल बाटे सुनत ना बाटे, अब डोमा जानी हमनी के छुए डरैले। स्पष्ट है कि स्वतंत्रता आंदोलन में उभरती हुई स्वतंत्र चेतना दलित समाज को न सिर्फ अपने प्रभाव में ले रही थी, वरन स्वतंत्रता आंदोलन को भारतीय समाज में मौजूद बंधनकारी भेदवादी व्यवस्था के जटिल सवालों के समक्ष खड़ा कर रही थी। इससे उभरते हुए राष्ट्रवाद में एक नया आयाम जुड़ रहा था। अजितानंद जैसे कवि उच्च वर्गीय जनों के आर्यवाद को कटघरे में खड़ा कर रहे थे। आए थे आर्य यहाँ नए, हमको हजम जो कर गए, छलबल से वे मालिक भय, तुम्हें याद हो कि न याद हो। अच्युतानंद ने भक्त कवियों की तरह आक्रामक भाषा में वर्ण व्यवस्था को प्रतिपादन करने वाले शास्त्रों पर तीखा आक्रमण किया। निर्दिन मनुस्मृति ये हमको जला रही है, ऊपर न उठने देती नीचे गिरा रही है, दौलत कभी न जोड़े गर हो तो छीन ले, व फिर नीच का हमारा दिल भी दुखा रही है, कुत्ते व बिल्ली मक्खी से भी बना के नीचा, हाशोक ग्राम बाहर हमको बसा रही है। दलितों द्वारा पूछे जाने वाले ये सवाल उस उभरती हुई दलित चेतना को इंगित करते हैं जो आगे चलकर भीमराव अम्बेडकर के विचारों में प्रखर रूप में प्रकट होती है तथा उच्च वर्ग नियंत्रित समाज के स्वतंत्रता आंदोलन के सम्मुख कठोर सवाल रखती है। मैथिली शरण गुप्त ने अनेक खंड काव्यों के माध्यम से भारतीय आख्यान परंपरा में कमतर आके गए या कम चित्रित स्त्री चरित्रों का अंकन करके तथा अन्य कवियों ने स्त्री शिक्षा विधवा विवाह दहेज आदि पर कविताएं लिखकर भारतीय स्त्री में आत्मविश्वास और आत्मगौरव की भावना को जगाने का कार्य भी किया। नारी के उदात्त रूप उसके परित्याग बलिदान और सहिष्णुता की भावना का चित्रण गीतों और खंड काव्यों में किया गया। मैथिली शरण गुप्त की निम्न पंक्ति एक तरह से उस युग की नारी संबंधी चेतना का प्रतिबिंबन करती है।
अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी आंचल में दूध और आंखों में पानी।
द्विवेदी युगीन कवियों में स्वच्छंदता की प्रवृत्ति दिखाई देती है। श्रीधर पाठक, मुकुटधर पांडे, गोपाल शरण सिंह, माखनलाल चतुर्वेदी, राम नरेश त्रिपाठी जैसे कवियों में यह प्रवृत्ति अपने प्रारंभिक चरण में दिखाई देती है जिसका विकास छायावादी कवियों में हुआ। रोमांटिक प्रवृत्ति के अनुकूल इन कवियों ने प्रकृति को किताबी नहीं वरन अपनी आंखों से देखा। विजन्म प्रांत था, प्रकृति मुख शांत था, अटन का समय था, रजनी का उदय था, प्रसव के काल की लालिमा में लसा बाल राशि व्योम की ओर था आ रहा। प्रकृति की ओर गहरे आकर्षण ने प्रकृति के अनेक चित्र कविता में संभव किए। नीरव निशा तपोवन नीरव, शांत दिशा आकाश, नीरव तारा गढ़ करते थे छिलमिल अल्प प्रकाश। प्रकृति का मानवीकरण भी हुआ है। बीती दिशा उषा उठाई, पहन सुनहला चीर। प्रकृति चित्रण में गहरा राग और कल्पनाशीलता मिली है। गगन नीलिमा में हीरी का तेज पुंज अभिराम एक पुष्प आलोकित करता था जलथल नभधाम। वर्षी सी उसकी किरणों में खाकर गहरी चोट, अंधकार और छिड़ छिपा था तरु पतों की ओट। द्विवेदी युगीन कवियों के प्रति चित्रण में छायावाद का स्पष्ट पूर्वाभास मिलता है। यहाँ प्रकृति प्राय संपूर्ण सत्ता की तरह चित्रित हुई है। द्विवेदी युगीन कविता की एक प्रमुख प्रवृत्ति इतिवृत्तात्मकता की है। इतिवृत्तात्मकता प्रमुखतः गद्य का स्वभाव है परंतु इस युग की कविता में प्रमुख प्रवृत्ति के रूप में उभरा। कवियों ने प्रायः वस्तुओं का इतिवृत्तात्मक व्याख्यान किया। इसके माध्यम से एक ओर रीतिवादी काव्य विषय से बाहर आने का अवसर मिला तो दूसरी ओर कविता प्रायः अविधात्मक और वाच्यार्थ प्रधान हो गई। दृश्य और वस्तुओं का यथा तथ्य क्रमबद्ध वर्णन कविता को इतिवृत्तात्मक बनाता है। द्विवेदी युगीन कवियों के वर्णन और कथा वर्णन में यह प्रवृत्ति विशेष रूप से दिखाई देती है। खरीफ के खेतों में जब सुनसान है, रबी के ऊपर किसान का ध्यान है, जहाँ तहाँ रट परोहे चल रहे, बहरे जल के चारों ओर निकल रहे, जौ गेहूं के खेत सरस सरसों घनी, दिन दिन बढ़ने लगी विपुल शोभासनी, सुदर सौफ सुंदर कुसुम की क्यारियाँ, सोया पालक आदि भी तरकारियाँ, अपने अपने ठौर सभी ये सोते, सुंदर शोभा से सबका मन मोहते। इतिवृत्तात्मकता के कारण द्विवेदी युगीन वर्णन में विद्वानों का एक तरह की स्थूलता दिखाई देती है। छायावादी कवियों के सूक्ष्म वर्णन को समानांतर रखकर देखने के कारण आलोचक छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह भी कहते हैं। उनकी दृष्टि में यह द्विवेदी युगीन इतिवृत्तात्मक स्थूलता के विरुद्ध काव्यात्मक सूक्ष्म का विद्रोह है। कविता में लाक्षणिक और व्यंजना, भाषा कौशल, परतदार अर्थ छवियों की संभावना, रूपक और बिंब को महत्व देने वाले आलोचकों और अध्येताओं ने इतिवृत्त की अभिधात्मकता को कमतर निरूपित किया। वे यह न देख सके कि यथार्थ वर्णन में इतिवृत्तात्मकता का महत्वपूर्ण स्थान होता है। साधारण जीवन की साधारण घटनाओं, दृश्यों, प्रसंगों का यथार्थ तथ्य वर्णन कविता में यथार्थवाद की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है। द्विवेदी योगीन कवियों के यथार्थ वर्णन के आग्रह को अनदेखा किया गया है और उसे इतिवृत्तात्मकता कहकर उसकी अवमानना का प्रयास किया गया है। द्विवेदी युगीन कवियों कविता की इतिवृत्तात्मकता यथार्थ चित्रण की गहरी भावना से संबद्ध है। कवि साधारण जनता के साधारण जीवन की तत्कालीन दशा का यथार्थ चित्रण करने के लिए इतिवृत्त का सहारा लेते हैं। अन्न नहीं है, वस्त्र नहीं है, उद्यम का ना उपाय, वन भी नहीं, ठौर ठिकाने को कहाँ जाए कहाँ खाए। ये कवि गहरी सहानुभूति के कारण देख पा रहे थे कि गरीबी, दैन विपन्नता ने साधारण जनता में अनेक अमानवीय दुर्गुणों को जन्म दिया है। चोरी जारी छल प्रपंच अघ आडंबर पाखंड बढ़ते जाते हैं जनता में दुर्गु परम प्रचंड। सबका एक मूल कारण है दरिद्रता विकराल, घर घर में है भरे भूत से भूखे नरकंकाल। यह गरीबी औपनिवेश तो प्रभुओं और उनके सामंतवादी अनुगामियों के सत्ता गठजोड़ का परिणाम थी। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सम्मुख यह एक बड़े प्रश्न की तरह मौजूद थी। यह कारण नहीं है कि उस दौर में महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू जैसे नेता इस निर्धनता से विचलित थे। राम नरेश त्रिपाठी के एक खंड काव्य की नायिका गाँव के किसान परिवार को और उसकी दिन दशा को देखती है।
देखा केवल चर्माच्छादित एक मनुज कंकाल, फटा पुराना एक अंगोछा पहने परम विहाल, बाहुबद्ध कर पद स्तंभ को चिंता ग्रसित अधीर, घुटनों मध्य चिंबुक रख कंपित थरथर अबल शरीर। वह किसान दरिद्र है, अन्न वस्त्र और बर्तन से हीन ऐसे गरीब अधपेट सोने वाले किसान भारत की वास्तविक जनता थे। गांव गांव में इन कंकाल रूप किसानों को गांधी ने भी देखा और द्विवेदी युग इन कवियों ने भी। चिपके पेट रीढ़ से जिसके चुचके पुचके गाल, मैथिलीशरण गुप्त ने निर्धनता और दैन्य के साथ किसानों की गहरी जीवनी शक्ति और कर्तव्यशीलता को भी देखा। बरसा रहा है रवि अनिल भूतल, तवासा जल रहा है, चल रहा सनसन पवन, तन से पसीना बह रहा, देखो कृषक शोषित सुखा कर हल तथापि चला रहे, किस लोभ से इस आर्च में वे निज शरीर जला रहे। घनघोर वर्षा हो रही, गगन गर्जन कर रहा, घर से निकलने को गरज कर व्रज वर्जन कर रहा, तो भी कृषक मैदान में करते निरंतर काम है, किस लोभ से वे आज भी लेते नहीं विश्राम है। अछूता नंद के दलित का जीवन किसानों की भी तरह कष्टकर है। हमको बिना मंजूरी बैलों के संग जोते, गाली व मार उस पर हमको दिला रही है, लेते बेगार खाना तक पेट भर न देते, बच्चे तड़पते भूख को या जुल्म ढा रही है, निस्दिन मनुष्य मृत्यु ये हमको जला रही है। कहना ना होगा कि द्विवेदी युगीन कविता वस्तुतः प्रगतिशील काव्यधारा की पूर्वज है, जिसमें साधारण जनता के प्रति गहरी सहानुभूति, यथार्थ चित्रण की भावना, लोक प्रचलित काव्य रूपों के प्रयोग की प्रवृत्तियां सहज ही दिखाई देती हैं। यह कविता अपने समय की सामाजिक चिंताओं से गहरे तक वावस्ता है। इस युग में कथा काव्यों का प्रश्न प्रमुखता से हुआ। ये कथा काव्य आमतौर पर महाकाव्य और खंड काव्य माने गए हैं। आधुनिक हिंदी कविता में द्विवेदी युग संभवतः इकलौता कालखंड है, जहां प्रबंध काव्यों की परंपरा भी सघन रूप में मौजूद मिलती है। अयोध्या सिंह उपाध्याय, रियौत का प्री प्रवास और मैथिलीशरण गुप्त का साकेत इस युग के प्रमुख महाकाव्य हैं। गुप्त जी ने बड़ी संख्या में खंड काव्य भी लिखे, जिनमें यशोधरा, विकट भट्ट, रंग में भंग, गुरुकुल, किसान, सिद्धराज, पलासी का युद्ध, जयदत्त वध, पंचवटी, जय भारत, जयनी और विष्णुप्रिया प्रमुख हैं। राम नरेश त्रिपाठी ने मिलंपतिक और स्वप्नखंड काव्य लिखे। इस युग के अन्य कवियों में सियाराम शरण गुप्त, राम नारायण पांडे आदि ने भी प्रबंधात्मक काव्यों की रचनाएं की। द्विवेदी युग के पश्चात इतनी बड़ी संख्या में कभी भी प्रबंधात्मक कृतियां नहीं रची गईं। इन प्रबंध काव्यों में प्राचीन पौराणिक और ऐतिहासिक कथानक प्रमुखता से लिए गए हैं, जिनमें चरित्रों का औदात्त्य और विपरीत परिस्थितियों से संघर्ष विशेष रूप से उभरा है। यह कहा जा सकता है कि अनेक उपेक्षित पात्रों का उन्नयन करने के साथ ही स्वतंत्रता आंदोलन के कार्यकर्ताओं को ज्वल अतीत से प्रेरणा प्रदान करना भी इसका प्रमुख कारण रहा होगा। ये प्रबंध काव्य सिर्फ परंपरा का अनुकरण ही नहीं करते, बल्कि आधुनिक विचारों का भी प्रकटन करते हैं। मैथिलीशरण गुप्त के प्रसिद्ध महाकाव्य साकेत के नायक रामेश्वर से अधिक महिमाशाली मनुष्य दिखाई पड़ते हैं। वे अलौकिक विभूति न होकर मानव सेवा के लिए कटिबद्ध परोपकारी व्यक्ति हैं। वे कहते हैं, संदेश यहाँ में नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को भी स्वर्ग बनाने आया। इन कथाओं में अनेक ऐसे स्थल हैं जो सामाजिक तार्किक बुद्धि से अविश्वसनीय मालूम पड़ते थे, इनमें उन कवियों ने सहज बनाने की कोशिश की है। इन कथा काव्यों में चरित्रों की मनोदशाओं के वर्णन की एक नई प्रवृत्ति दिखलाई दी। यह संभवतः आधुनिक कथा साहित्य का प्रभाव है। मन स्थितियों को साधारण जीवन की क्रिया प्रतिक्रिया के रूप में देखने की कोशिश की गई है। इसे आधुनिक मनोविज्ञान के विकास के साथ भी जोड़ा जा सकता है। रामचंद्र शुक्ल के मनोविकार संबंधी निबंध द्विवेदी कवियों के मनोदशाओं के वर्णन और प्रेमचंद्र और चंद्रधर शर्मा गुलेरी के कथा साहित्य में चरित्रों का मनोचित्रण साहित्य में एक नए रुझान का संकेत करता है। साकेत के कैकेयी कानुताप प्रसंग को इस परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है। द्विवेदी युगीन कवि अनेक मायनों में छायावाद के भी पूर्वज कवि थे। एक ओर उन्होंने प्रबंध काव्य लिखे तो दूसरी ओर बड़ी मात्रा में व्यक्ति परक गीतों की सृष्टि भी की। पहले की ही तरह मुक्तक रचनाएं बड़ी मात्रा में होती रही। इस युग में छंदों के क्षेत्र में अतीत और वर्तमान का संगम मिलता है। दोहा, कवित्त, सवैया आदि ब्रज भाषा के छंद, मद्रा, क्रांता, शिखरिणी, शार्दुल, विकीर्ण आदि संस्कृत के वर्णवित तथा उर्दू बहर के छंद इस काल की कविता में प्रयुक्त हुए। लावनी, फाग, होली आदि लोक गीतों का प्रणयन भी होता रहा। अतुकांत और मुक्त छंद कविता के पूर्वाभास भी इस युग में दिखाई देते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी के निरंतर प्रयत्नों से खड़ी बोली काव्य भाषा के रूप में इस युग में व्यापक रूप से स्वीकृत हुई। यद्यपि प्रमुख कवियों ने भी छुटपुट तौर पर ब्रज में रचनाएं लिखी, खड़ी बोली को एक मानक रूप और व्याकरण समतता भी प्रदान की गई।
द्विवेदी युगीन कवियों ने अपनी युगीन परिस्थितियों में राष्ट्र और समाज के प्रति अपने दायित्व का कविता के माध्यम से निर्वहन किया। कवियों ने परतंत्रता की बेड़ियां काटने के लिए आत्मोत्सर्ग और बलिदान के पथ पर चलने का आह्वान किया, जिससे राष्ट्रीय आंदोलन को शक्ति मिली। भारतवासियों को मोह निद्रा से जगाने, सामाजिक कुरीतियों की ओर ध्यान आकृष्ट करने, प्राचीन भारतीय विरासत का स्मरण कराकर मन की हीन भावना दूर करने, सामान्य मनुष्य को गौरवान्वित कर दूषित सामंती वृत्तियों से कविता को मुक्त करने, मानवतावाद की प्रतिष्ठा, साधारण जीवन के यथार्थ चित्रण और काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली को काव्योचित बनाने की दृष्टि से काल के कवियों का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन कवियों ने सहजता का रास्ता अपनाते हुए स्वच्छंदतावाद और यथार्थ वर्णन की वह पृष्ठभूमि निर्मित करने का महती कार्य किया, जिससे छायावाद और प्रगतिशील काव्य धारा का विकास हुआ। इस दृष्टि से द्विवेदी युगीन हिंदी कविता का ऐतिहासिक महत्व निर्विवाद है।